أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نصیب میں کیا ہے اور اللہ تعالی ہمیں بہترین عطا فرمائے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله ہم نے مراتب ایمان کا پہلا دن دیکھا اس میں جو کچھ تھا وہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا آج ہم اس کے اندر جو پہلی کیٹیگری نیچے سے ہے اگر آپ کے سامنے آیت کھلی ہو تو اس کو کھول لیجئے اور دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے بعد کس کا تذکرہ کیا مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں کا تذکرہ کیا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ آپ آیت کے اوپر فوکس کریے تو آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر کہہ لیجئے کہ ایمان کے اعتبار سے جو پہلا گروہ ہے انم اللہ علیہم میں وہ من النبیین ہے جس پہ ہم نے کل تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ وہبی ہے قصبی نہیں ہے کوئی آپ میں سے میرے میں سے خواہش بھی نہیں کر سکتا یہ خواہش رکھنا بھی جرم ہے اور آپ کو پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 30 جھوٹے کذابوں کا تذکرہ ہو گیا تھا یعنی اللہ نے اپنے نبی کو زندگی میں ہی یہ دکھا دیا تھا کہ آپ کے بعد کچھ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس میں مسلمہ کذاب تھا اور اسی طرح سے اسود انسی ایک عورت بھی تھی سجا نام کی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو یہ تو آؤٹ آف دی کوشچن ہے ہاں من النبیین کے لفظ پہ آپ کا میرا عمل کیا ہونا چاہیے اے اللہ ہمیں نبیوں کے مشن پہ لے چل اے اللہ جو انبیاء کرام اور ہمارے پاس تو دنیا کے بہترین آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے تو جب لفظ نبی پڑھیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نمبر ایک کیا واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آج میرا بھی اسوہ ہے قیامت کے دن جب میرے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ میچ کیے جائیں گے تو کیا شیڈ کا کوئی فرق تو نہیں ہوگا یعنی جتنا بن سکے جتنا نبی کے کردار نبی کے طریقے پہ اپنے آپ کو لے کے جا سکے لے جائیے اور کل قیامت کے دن انہی انبیاء کرام کے ساتھ اٹھنے کی خواہش کریں اور ہمارے ذہن میں لفظ نبی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ نبیوں نے دین کے نام پر جتنی مشکلات سہی ہجرتیں کی جنہوں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دین اس طرح سے لیا جس کو آج کی زبان میں آپ اور میں کہہ سکتے ہیں ایز اٹ از جیسا ہے ویسا لیا اور جیسا لیا ویسا ہی آگے پہنچا دیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حصہ چھپایا نہیں ہے اور نہ اپنی مرضی سے کچھ بولا ہے جو بولتے تھے جو کہتے تھے وہ وہی ہوتا تھا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے تھے تو لہٰذا آپ کا میرا اسوہ کیا ہو کہ اگر کبھی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پہ چلتے ہوئے دین کی بات کرنے کی توفیق ملے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خبر دی تھی کہ علم والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ایز اٹ از بلا کم و کاست مشکل اردو اگر بولوں نا تو بلا کم و کاست جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک زبر اور زیر اور ایک پیش اور کسی چھوٹی سی چیز کی بھی کمی نہیں کرنی اور اس رستے میں اگر اپنے بیگانے بن جائیں تو پریشان نہیں ہونا ولا تخافون اللومت لائم والی کردار نبیوں کا تھا اپنوں نے بیگانہ کہا گھر والوں نے کہا مجنوں دیوانے کاہن کہلائے ہم نے اسے گھبرانا نہیں ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ کا کلام اٹھاتے ہیں تو آپ اجنبی ہو جاتے ہیں فتوبہ للغربا आज के दौर में जो सच्चा दीन अपनाएं वो दीवाने और मजनू हो जाते हैं, और जो माशरे के रस्म रिवाज पे चले, एक एक शादी में कम से कम एक मतवसत तबके का, जिसको आप कहें अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने वाला मुसलमान, 70 से 80 लाख रुपया ना लगा ले, शादी नहीं होती। घर वाले कहते हैं हुआ क्या, कंजूस है अब्बा, कंजूस है, बीवी तो पता नहीं क्या कुछ दिल में सोचेगी। तो ऐसे दौर में किसी का ये कहना कि मैं सारी जिंदगी दूंगा, मेरी बेटी है, बहू है तो मेरी बेटी बन के आ रही है, और अगर मेरी बेटी जा रही है तो जिधर जा रही है तो उनके पास क्या इसको खिलाने और सुलाने बिठाने के लिए चीजें नहीं है। तो इस तरीके के दौर में अगर आपको अजनबी बनना पड़े तो शौक से बनिए, क्योंकि अल्लाह के नबी भी अजनबी बने थे। ये तो बात हो गई इस बारे में। अब दूसरी बात रह गई कि अगले लफ्ज पे चलिए, अगर इसी आयत में, तो नबी जी इनके बस सिद्दीकीन है। मैं इस तरतीब को, यानी आयत की तफसीर तो हल्की सी कर दी ना आपके साथ डे वन पे, इस तरतीब को बदलना चाहती हूँ, इस सोच के साथ कि यहाँ इस बात को सुनने वाले आप तो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टूडेंट्स भी तो डिफरेंट लेवल के हैं ना। आप में सबीलुल जन्ना के लोग भी बैठे हुए हैं, आपके इस सेशन में इस वक्त नूरुल्ला नूर के भी हैं, और आप में हिकमतुन बालिगा के भी हैं। मैं आपको क्यों वो मेयार पहले दूं जो सबसे आखिर में? अभी एक बंदा शुरू ही नहीं हुआ, आप में से आज गेस्ट भी होंगे कुछ, जो अभी तक सबीलुल जन्ना के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सके ना, जो अभी तक नहीं कर सके, तो लिहाजा आपकी सहूलत को सामने रखते हुए लफ्जों में से चुनने हुए आज आपके साथ सालेहीन पे बात होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर हमारा इसके आगे ऊपर वाले लेवल पे होगा, और उसके बाद फिर ऊपर का होगा। सारी बात से फायदा क्या होगा आपको कि आप देखेंगे कि कदम कदम चलिए। और इस वक्त जो साथी हमारे साथ बाहर से सुन रहे हैं, जो YouTube पे हैं, Facebook पे, और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, और हमारे वो साथी जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है, इसका इत्तेफाक मुझे इस दफ़ा हुआ। जो हमारी फ्राइडे क्लास स्पेशल क्लास है वो आम लोगों के लिए नहीं है, क्लोज रूम में होती है, लेकिन सदका और कह लीजिए कि जो अपने लिए पसंद है वो दूसरों के लिए भी पसंद है। तो मैं जिस भी स्टेशन में ट्रैवल के दौरान होती हूँ तो हम उस शहर के लोगों को ऑफर कर देते हैं कि एडमिन्स तो आएंगे, आप भी आना चाहें या अपनी दोस्तों को बुलाएं। तो ये जो वीक गुजर गया फ्राइडे का, उसमें ये क्लास हमारी आयरलैंड से हुई, मुश्किल सा नाम था शहर का, कोई डबल डी आता है उसमें, तो फिर उसमें लिसनर्स भी थे। तो जब वो पहले वाले सेशंस तो हो गए, लेकिन तफसीर के वक्त में काफ़ी साथी दूसरे भी आ चुके थे, तो बाद में फिर मुझे वो सिस्टर्स, जो बेचारी शायद वो नया नया शहर था कि वहाँ अभी कोई लेक्चर्स भी नहीं होते इतने, शायद फर्स्ट टाइम ही कोई फीमेल उनको उर्दू में सिस्टर वहाँ मिली होंगी, तो उनमें से कुछ लोग इतने मोटिवेटेड थे कि उन्होंने कहा क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं ज्वाइन। तो मुझे बहुत ही प्यार आया उन पर, मैंने कहा, उन्होंने बेचारों ने आज चखा जो ये है तो इनका यही दिल करेगा ना, तो मैंने कहा आप करेंगी ये, लेकिन इससे पहले कुछ और है। मेरे लिए सारे ही लोग जिधर बैठे थे उन्होंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो आज का ये सेशन अगर आप में से किसी के कानों पे पड़े, हमारे प्यारे साथी, और हम सब मुसलमान, और आप सबसे एक मुस्लिम ब्रदरहुड पे प्यार है, जो बाहर से सुनते हैं, जो रात चलता भी सुनता है, किसी के कानों में कोई एक आवाज़ भी आ जाती है, तो मैं कहती हूँ कि इस कुरान से महरूम ना रहिए, इसके बगैर दुनिया से ना जाइए। अपने लिए उम्र मांग लीजिए कि मेरे मालिक मैं जिंदगी चाहती हूँ तुझसे, क्योंकि मैंने अभी इस किताब को सीखना है, क्योंकि मुझे पता चला कि ये किताब पढ़ने के बाद जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो लिहाजा आज हम बात करेंगे लफ्ज़ सालेहीन पे, सालेहीन कौन है। और आपको मैंने जैसे पहले इतनी तमहीद के अंदर ये बता दिया कि बेहतरीन तरीके से अपने आप को लेने के लिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेपर, यानी सालेहीन वो हैं कि जो खुद को इस्लाम के मुताबिक बनाना चाहते हैं। मैं इसकी तारीफ को अगर जोड़ दूं उससे जो कल आपको फ्लो चार्ट दिखाया था ना, कि इससे पैरेलल लफ्ज कुरान पाक में जो इस्तेमाल हुए हैं ना, तो उसमें से एक अब्द, अबदियत, खुल्लत या खिल्लत, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन लेना चाहें, और तीसरा क्या दिखाया था आपको, याद कीजिए, विलायत। यानी सालेहीन का दर्जा वो दर्जा है जिस पे यहाँ बात हो रही है, हसन उलाइका रफीक, आगे अल्लाह ने कहा। तो सालेहीन कौन होते हैं, चंद बातें अब सिर्फ इसी पे छोड़कर अपने आप को सेट करें कि सालेहीन कौन होते हैं, कि जो अपने आप की सलाह चाहते हैं। देखिए दो लफ्ज लिखिए तो आपको बहुत ही प्यारा मतलब समझ आ जाएगा। एक लफ्ज लिखिए सालेह, स्वाद अलिफ लाम हा, और ये लफ्ज असल में उसी की जमा है, सालेह से सालेहीन जमा। इसके नीचे एक लफ्ज लिखिए मीम स्वात लाम हा, मुस्लिह। बात समझ गए, उसकी जमा भी लिखना चाहे तो वो भी बोल देती हूँ, मुस्लिहीन। लफ्ज मुस्लिह कौन है? जिसको दूसरों की इसलाह का गम लग जाए, वो कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं रहने देना, मैंने दुनिया को बदलना है, मैंने इंसानों को बदलना है, मैंने लोगों के अंदर से गलत चीज़ें निकालनी है और मुझसे ये गंदगी नहीं देखी जाती। यानी वो फिर अंसारुल्ला भी होगा, वो एडमिन भी होगा, वो जिम्मेदार भी होगा, वो सब कुछ होगा, किसी न किसी एंगल में वो अपने आप को सेट करेगा। किस चीज़ के साथ सेट करेगा? कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है और साथ ही साथ करवाना है। वो होगा मुस्लिह। यहाँ लफ्ज़ मुस्लिह की बात नहीं है, वो तो बहुत ऊपर का दर्जा है। आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे अल्लाह ताला पे प्यार आएगा अगर आप मुस्लिहीन की कैटेगरी में है। और हिंट दे देती हूँ कि मुस्लिहीन ही असल में सिद्दीकीन के साथी होते हैं, यानी मुस्लिह बनने से पहले सालेह बनना पड़ता है, सालेह बनना पड़ता है। और आज इंशाल्लाह आपको इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि सालेहियत के लिए इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें लाजमी होती हैं। आपको मुझे सबसे पहले अपनी फ़िक्र करनी है। और यहाँ आपको जहाज़ में सुनी हुई एक बात जो आप जितना सफ़र करते हैं उतनी दफ़ा आपने ज़रूर सुनी होगी, और वो क्या है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दूसरों की हेल्प करने से पहले। ये जो अपनी सीट बेल्ट बांधना है ना, ये सालेह होना है। अपनी फिक्र, अपना गम लग जाए, ये मैं क्या हो गया मुझे, ये मैं इतनी गंदी क्यों, ये मैं इतनी ख़राब क्यों, ये मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं वो क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या हो गया। और याद रखिए कि तकवा जो होता है ना, मुत्तकीन, असल में वही रंग ज़रा सा गहरा होता है ना तो सालेहियत का रंग चढ़ जाता है। बहुत सारे लोग लफ्ज़ मुत्तकी सुनते ही कहने लग जाते हैं कि पता नहीं ये कोई दाढ़ी नमाज वाले और पर्दे हिजाब में मलबूस ख़वातीन का नाम है, मुत्तकियात। नहीं, लफ्ज़ मुत्तकी की तारीफ सबीलुल जन्ना से शुरू कर देती हूँ आप लोगों को बतानी, और वो क्या है कि जिसको अपनी बुराइयाँ चुभने लगें, जो ख़ुद को बदलने की ख्वाहिश रखे, जिसके दिल में ये तड़प पैदा हो जाए कि मैंने गंदा नहीं रहना, मैंने अपने आप को संवारना। तो सालेहीन वो हैं। अब आप देखिए कि लफ्ज़ अगर मैं थोड़ा सा ग्रामर का नहीं टच करती लेकिन फिर भी बात समझाने के लिए, सालेहीन, फाएलीन, फाइल के वजन पे है सालेह। और अगर अभी इस्लाह की कोशिशों में हो तो लाम पे जेर नहीं होगी, सालहीन होगा, जो मैं नहीं करना चाह रही इस वक्त आपके लिए। बस आप ये लिख लीजिए कि मुत्तकी वो है जिसमें अपनी इस्लाह की तड़प जागती है। और वो कोई दौरे कुरान होता है जो आप सुन लेते हैं और आग लग जाती है अंदर, हाय हाय मैं ऐसे फिर रही हूँ, हाय कुरान में तो ये है, ये तो सूरह बकरा में पढ़ा था, वो किस किस बारे में, तो ज़रा बताना वो क्या है, वो कैसे है, वो किस तरह से है, वो क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, हम इस तरह सोचने लग जाते हैं। और कभी कभी वो कोई लेक्चर होता है ट्रिप्स में, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए शायद यही एक रिलैक्सिंग पिल होती है, टायर्डनेस मेरी ख़त्म हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, चार चार घंटे के सफ़र के बाद भी मैं फ़्रेश क्यों दिखती हूँ, कि मुझे वहाँ कोई मिल जाता है और वो आकर कान में कहते हैं, आपको तो आप 4 साल पहले आई थी हमारे शहर में, अच्छा अच्छा माशाल्लाह मैं तब आपको मिली थी, अच्छा माशाल्लाह पहला दर्स था मेरा, वो कभी नहीं था सुना मैंने वो मैसेज कभी ऐसे, अच्छा फिर क्या कहती, उस दिन से लेके आज तक नमाज नहीं छोड़ी। कोई कहता मैंने कुरान शुरू कर दिया, आपको तो मैंने आपके कहने पे ऐसे 19 शुरू किया था और अब हमारा पूरा होने लगा है। ये वो चीज़ें हैं कि जो क्या एनर्जी ड्रिंक होगा, क्या कोई स्मूदी देगी आपको एनर्जी, क्या आप पराठा रोटी चावल खा के जो अपने अंदर एनर्जी लेते हैं, बल्कि उसमें तो नींद आने लगती है, इसमें मैं जाग जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने भी और जगहों पर जाना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी के आखिरी दम तक नए लोगों से मिलाता रहे। लोग कहते हैं मैं इल्म वालों से मिलूं, इल्मी बड़े प्यार करने वाले, इल्म से मोहब्बत, जैसे स्टूडेंट्स हैं और से और पढ़ते हुए उलमा, वो भी एक अच्छी ख्वाहिश है। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे भटके मुँह से मिला। अल्लाह मुझे वो मिला के जिनके कपड़े भी बुरे नहीं है, मुझे साफ जहन दे, प्योर खालिस लोग दे कि जिनकी जिंदगी वाकई बड़ी खूबसूरत हो। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जो सालेहियत का दर्जा दिया ना, मैं आपको आप उसको इस तरह सम अप करवाती हूँ कि सालेह वो होता है कि जो मुत्तकी बनकर अपनी इस्लाह में कामयाब हो चुका होता है। यानी हम सूरह स्वाद की आयतों में करते हैं ना, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। तो मुखलिस और मुखलस का फर्क किस किस को याद है, हैंड रेस कीजिए। बस वही फर्क इधर है, मुखलिस पे ही है, फाइलीन पे सालेहीन यानी जिसकी इसलाह हो चुकी। रस्ते के रोड़े होते हैं, बंदा कभी कहां से चलता है, कोई किसी तवायफ के घर भी तो पैदा होता ही है ना। हर बच्चा आलम दीन के घर थोड़ी पैदा होता है, कुछ चोरों के भी तो बच्चे होते हैं, डाकुओं के भी तो बच्चे होते हैं, और जो बड़े बड़े फ्रॉड कर देते हैं, गबन करते हैं, उनके बच्चे नहीं होते। आप हर बच्चे के नसीब में ये ना सोचिए कि पैदा होते ही माँ बाप को उसकी इसलाह की फिक्र लग जाती है। माँ बाप ऐसे भी होते हैं, यानी मैं दिल पे गिरते आंसुओं के साथ बताने लगी हूँ कि कुछ बच्चियाँ और बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको बड़े ही बुरे माँ बाप मिलते हैं। वो कहते हैं खबरदार, कोई जरूरत नहीं कुरान पढ़ने की, और बेगम को कहते हैं तुम तो बन गई ना मौलवियानी, अब ये बेटियों को ना बनाना, और ये मेरे बेटे किधर डाल दिए मेरे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मौलवी साहब की जरूरत मैं खुद देख लूंगा, जाओ बेटा पढ़ो, आपकी स्टडीज बहुत मुश्किल है। ऐसी टोन के बाप भी हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप तो पैदा हो गई आलिम के घर में, आलिमा के घर में, आपका सारा खानदान उलमा का मान लिया, ये बताइए कि आप उस लेवल के एतबार से कितनी को नेक हैं अभी। ये और सख्ती है, जो किसी इल्मी घराने में, जो किसी दीनदार घराने में, जो इस्लाम फ्रेंडली पेरेंट्स के घर पैदा हुआ, उसके सालेह बनने में ज्यादा सख्ती है। कि भाई तुझे तो पैदा होते ही कान में अजान की आवाज आई थी, तूने तो अपने बाप को मस्जिद में जाता देखा, तेरी तो माँ दूसरों को पढ़ाती थी सिखाती थी, तू क्यों बिगड़ा? आपका क्या ख्याल है कि हजरत नूह के बेटे का हिसाब आराम से हो जाएगा? आज पहली दफा ये बात कहने लगी हूँ। हम हमेशा जब हजरत नूह के बेटे का तذکرہ करते हैं ना, तो हम हजरत नूह को ज़हन में लाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, हाय बेचारा नूह बेटा सामने डूब रहा, या बुनैया अरकब माना। सूरह हूद में पूरा वाक्य है, ऐ बेटे आ जा हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। हम हमेशा हजरत नूह के सिनेरियो से सुनते हैं, कभी आपने आज चलिए सोचिएगा, अगर इस पे आज ही गौर करने लगे हैं, हजरत नूह के बेटे के बारे में भी सोचा, कितना बदबख्त था, कितना महरूम था। बाप कह रहे बेटा कश्ती में सवार हो जा, वो कहते सावी ला जबलिन, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, या सिमुनी मिनल माई, वो मुझे पानी से बचाएगा। ये क्या टूटी फूटी कश्ती पे बाप लेके बैठे हैं और बिठा रहे हैं और कर करा रहे हैं, मैं नहीं मानता। फिर वो उसको इस तरीके से लेके चलते हैं। तो लिखिए, अल्लाह के चुने हुए बंदे, महबूब बंदे सालेहीन होते हैं, इनकी जिंदगी अमाले सालेहा से इबारत होती है, और वो बतौरे आदत, लिखिएगा बतौर सवाब नहीं, बतौर आदत ख्वाहिशात नफ्स की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करते हैं। चाहते हैं आप और मैं अपने बारे में यह औसाफ पैदा करना, जिनको देख कर अल्लाह याद आ जाए, ये अल्लाह वाले होते हैं। फिर ये अब्दियत के रंग में डंगे होते हैं, ये अब्द होते हैं, ये आबिद नहीं होते, आबिदास नहीं, ये अब्द होते हैं, 24 घंटे के मुस्लिम। और जब तक आपको ये ना मिल गया, तब तक बात नहीं बनेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनकी चीज़ों को पॉइंट वाइज लें। सिर्फ इसी लफ सालेहीन पे नज़रें जमा कर लिखिए। नंबर एक, ख्वाहिश नफ्स से इज्तनाब। याद रखिए कि सालेहीन के दर्जे पे वही मुत्तकी पहुंचेगा। अब ये जुमला जब मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँ तो समझ जाएंगे ना, मुत्तकी वो है जो बदलना चाहता है खुद को, साले जो बदल चुका है, मुत्तकी वो है जो अपने गुनाह छोड़ना चाहता है, साले जो वो छोड़ चुका है, मुत्तकी नेकियां अपनाना चाहता है और साले अपना चुका है। फर्क समझ गए ना, जैसे ट्रेन की पहली बोगी और आखिरी बोगी, या पहला स्टेशन से आखिरी आपका लास्ट स्टेशन जहां आपने पहुंचना है। और मुत्तकी तो बंदा बन जाता है कुरान पढ़ते ही, कईयों की तो जिंदगी में कुरान आता ही नहीं है और वो पहले ही मुत्तकी बन चुके होते हैं, उनको चुभता है अपना आप, वो कहता है मुझे अपने आप को बदलना है, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। और यंग बच्चियों से भी बहुत मिलती हूँ जब, तो उनके अंदर भी देखती हूँ, रुंधी हुई हैं, जिसको आप कहते हैं ना गोडे गोडे फंसी हुई हैं पढ़ने पढ़ाने में, जिनकी जिंदगी हकीकत में वाकई, यानी माँ बाप ने उनको गढ़े में दबो दिया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनके भी अंदर एक तड़प है कि आई एम नॉट हैप्पी, कुछ कमी है जिंदगी में। तो जो सालेह बनता है ना, उसके लिए सबसे पहली चीज नफ्स की ख्वाहिशात से इज्तनाब, यानी ख्वाहिशात नफसानी से किस हद तक इज्तनाब होने लगता है कि इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी के सर्वाइवल किट पे आ जाता है। खाता वो भी है, पीता वो भी है, पहनता भी है, सोता भी जागता, लेकिन उसके दिल में एक वो उथल पुथल नहीं होती किसी की चीज देखकर, क्या है, किधर से आया, कितने का है, किधर से मिलता है, क्या है। हाँ, उसको किसी की वो चीज अट्रैक्ट करेगी जो उसकी तलब थी और उसके पास नहीं है। कहाँ से आती है, मैं भी ले लूँ, मुझे ये चाहिए, सिंपल बात, समझ गया ना। यानी राल नहीं टपकती सालेहीन की। आराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, सूरह फुरकान आयत 43 है। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। तो इससे ऑपोजिट होते हैं। अब इसका ये नहीं मतलब कि खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, जागना नहीं, सब कुछ होता है, दिल में तमा नहीं होती, हैर्स खत्म हो जाती है, हवाओं में नहीं उड़ते ख्वाहिशों के पीछे, और 50-50 हज़ार रुपये का एक जोड़ा नहीं वो खरीद लेते अपने लिए। वो ये नहीं कहते कोई बात नहीं ना, पाकिस्तान के इतने, हमारे तो इतने ही है ना, कुछ नहीं होता। सालेह बनने वाले को 1 रुपया अपनी जात पे लगाना पड़े तो वो परेशान हो जाता है कि ये 1 डॉलर, चले यहाँ की बात करें, 1 यूरो नहीं है, ये 200 रुपये हैं, तो 200 रुपये की आज भी 10 रोटियां आ जाती हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो 10 गरीबों का पेट तो भर जाएगा। मैं अपने इस मट्टी के बुत के ऊपर क्या 1 यूरो लगाऊं, ये सालेहियत है। इसका ये नहीं मतलब कि एस्केपिज्म है। और ऐसा शख्स नफा नुकसान जरर का दूर होना, शर का दूर होना, दुनिया के असबाब का मिलना, और मुझे किस रास्ते में कितनी जिद्दोजहद करनी है, इन तमाम मामलात में अपनी जात पर भरोसा करने की बजाय सारे के सारे अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द करता है। तू पकड़, इसको मुश्किल लफ्ज में लिखते हैं तफवीजुल अमर, आगे कहीं लिखा दूंगी, अभी आप बस ना लिखें, बस सुन ले, तफवीजुल अमर। और ये कुरान में कहाँ है, जिनका हिफ्ज पक्का है या जिनका तर्जमा पक्का है, सूरत मोमिन, मर्दे मोमिन क्या कहता है, वफ़विज़ अमरी इलल्लाह, वफ़विज़ अमरी इलल्लाह, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वो अपने सारे मामला अल्लाह को देता है। लोग कहते हैं शादी आ रही कपड़े बना लो, शादी आ रही कपड़े बना लो, वो कहता है बने हुए, और वो बने होते हैं, उसको नहीं पता होता। लोग कहते हैं सर्दी आ रही, सर्दी आ रही, जल्दी कर लो, सर्दी आ गई, स्वेटर लेने, कब, मेरे लिए हुए हैं, मैंने लिए हुए हैं, उसको नहीं पता, ना उसको तलब है ना तड़प है, आएगी सर्दी, पता नहीं पहले सर्दी ने आना है या मैंने चले जाना है, मैं क्या रखूं। और गर्मी आ रही, गर्मी आ रही, और पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान जाना, दुनिया ने ये रोग पाले हुए हैं, इसकी वजह से वक्त भी नहीं बचता, माल भी नहीं बचता, और सोचें भी नहीं बचती। फिर पूरी तरह वो अल्लाह को समझता है, क्या समझता है, काजील हाजात, लफ्ज़ काजी लिखते हैं ना उर्दू में, अरबी का लफ्ज़ है ये, मैं अरबी में बोलूंगी तो कादियुल हाजात, अल्लाह को समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि अल्लाह को जब तक मैंने मुख्तारे कुल ना समझा और अपने नफ्स पर एतमाद कर लिया, तो गोया कि ये मैंने शिर्क कर लिया, क्योंकि आराई तो मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, यानी उसको अपनी जात के ऊपर गौर व फिक्र करके, या अपनी जात पर, मैं पका लूंगा खाना, मैं बना लूंगी रोटी, ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो मैं झटझट कर लूंगी, उसके लिए ये जुमले भी बोझल होते हैं। कहता है तेरे से कैसे, उसी दिन देखिएगा दाल गल जाएगी, उसी दिन चावल जल जाएंगे या चावल ढीले हो जाएंगे। जहां बंदा अपनी जात पे आता है उसके बाद बातें बनती हैं। तो याद रखिए, ख्वाहिशात नफ्स की नफी, नफसानी ख्वाहिशात है ना, इसकी नफी से फिर अल्लाह का काम शुरू होता है। जब आप खुद जो हुथले दे रहे हैं तो अल्लाह क्यों करे आपके काम, ये हमारी हुथले होती हैं जो हम भागा दौड़ियां कर रहे होते हैं, पुट्टी सीधी, ये हुथले हैं। लेकिन ना, एक बंदा खाना बना रहा है, बनाने दीजिए उसको, अब आप जाके चमचा फेरें, फिर आप बीच में जाके नमक डाल दें, तो वो गुस्से वाली बहू होगी कि मामा खुद ही पका लो। आप खुद जानते हैं खाना पकाते कोई पसंद नहीं करता कि कोई उसके खाने के अंदर चमचा भी फेर जाए। तो जब हम अल्लाह के कामों के बीच में अपनी मर्जियां मारते हैं तो फिर सालेह ही नहीं बनते। और याद रखिए कि अल्लाह ताला के जब फैसले उस बंदे पे नाफिज होते हैं ना, दुनिया हैरान हो जाती है, घर पड़ी चीज उसकी मैच हो जाती है, उसको बाजारों के धक्के नहीं खाने पड़ते। कब की किसी की गिरी पड़ी चीज, रुली रुली कपड़े की चीज, वो कहता है कि ये नहीं मेरे काम, उसका काम उसी से बन जाता है, उसको मैचिंगों के लिए भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, जो मेरे नसीब के आ जाएगा, पहले ही इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं उसको कि अल्लाह ने तेरा काम किया हुआ है, मैं क्यों अपनी जान को रोगी करूं। शर्त एक है कि पहले आप इस दर्जे पे पहुंचे और लिख लें, कल्ब मुतमईन होगा सालेह का, सीना फराख होगा और कुशादा होगा, और चेहरा रोशन और पुरनूर होगा, और ताल्लुक बिल्लाह की रूहानी कुव्वत पाकर कायनात की सारी चीजों से बेनियाज हो जाएगा। जब ये रोड़ा ही निकल गया, देखिए ये ख्वाहिश के रोड़े ने आज दुल्हन के जोड़े को 5 लाख रुपए पहुंचाया है, कल भी सुनाया था आपको, और दुल्हन की मां के जोड़े को कम से कम 50,000 से शुरू किया। ये ख्वाहिश नफ्स है। जब ये ख्वाहिश का कीड़ा ही दिमाग से दिल से निकल जाता है तो आप वलीउल्लाह बन जाते। ये है विलायत। आप पता नहीं क्या कहते हैं, विलायत वो होती है जो जाके गंदे मंदे कब्रों पे बैठे होते हैं और अल्लाह हू की तस्बीहां गिरते हैं। ये विलायत नहीं है। विलायत वो है कि आपका दिल गनी, लैसल गिना बिल माल, माल के साथ गिना नहीं है, गिना क्या है, बिलकल्ब। वो कहते हैं ना, गुजरा हूं बाजार से, लेकिन बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। वो दुनिया के इस बाजार से जाकर खरीद फरोख्त नहीं करने आते, वो खरीदते ही वो चीज है जिसको फिर मल्टीप्लाई करके वो उसको करोड़ों में बदल सके। वो लेने से पहले सोचते हैं कि बाद में इसका करना क्या है। वो एक ख्वाहिश पे अपना पर्स खाली करके नहीं आ जाते, नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं घर से जब तक ये मुझे अंगूठी ना मिल गई, और मेरी बेटी की तो शादी हो नहीं सकती जब तक बाप जिबा ना हो जाए। आजकल बाप जिबा हो रहे हैं, बिलीव मी, मर्द नुचड़े गए हैं हमारी औरतों की ख्वाहिशों के पीछे। वल्ला ही पता नहीं किसका दर्द है मेरे दिल में, मैंने अक्सर यही देखा। और फिर गिले और शिकवे कि ये करता कुछ नहीं और ये देते कुछ नहीं, और वो कहते हैं ना, कोल्लू का बैल बन के भी नुचड़ के तेल अपना निकाल के आपको लाकर कुछ देगा, आपको उसी शादी में किसी अपनी बहन और किसी खाला की बेटी की चीज ज्यादा पसंद आ जानी। घर आते ही आपने उसको मैं ना मारना है कि मुझे जो ले दिया था देखो जरा मेरी बहन ने क्या पहनना था। यकीन करें इसको निकाल दें। और मैं यकीन से कह सकती हूँ, मेरी बात पे आपको यकीन है, मुझे पता है, यहाँ वालों को तो है, बाहर से जो लोग सुनते हैं उनको भी हो गई तभी बैठे। ये निकालने की देर है, फिर देखिए क्या होता है। ये डक्का है, पंजाबी का डक्का पता है ना, ये वो क्लॉग है, इंग्लिश का क्लॉग पंजाबी का डक्का होता है, ये रुकावट है। पानी नहीं आ रहा, सिंक में पानी रुक गया, आप सब्जी धो रहे हैं, पालक धोई तो निकल नहीं रही, पता क्या चला कि क्लॉग आ गया है। वो क्लॉग निकाले फर फर पानी जाता ही। अल्लाह के नबी की हदीस हर लम्हे आपके दिमाग में रहेगी कि जो दुनिया के पीछे भागता है दुनिया उससे आगे भागती है। वो अभी पैसे जमा करके गया है, बल्कि हम तो गई ही है ना, तो वो चीज और महंगी हो गई है, वो खत्म ही हो गई है। हाय जान ही रूह परवाज हो गई, हाय हाय कल तो थी आज चली गई, मर गए मिट गए। नाम पे बुक करके ये एल्बम मेरे नाम पे लिख दो, ये किसी और को ना देना, इस पे सिग्नेचर कर दो। सबको समझ आती है ये बातें। अब रुलता है बंदा, रुलता है इस दुनिया के लिए, और दुनिया उसकी वो कहते हैं ना गिची मरोड़ देती है। और जब ये निकलता है तो वो सारी दुनिया पहले आपके हाथ में आती है, फिर किसी के हाथ में जाती है। ये ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम कहते नहीं मर जाएंगे, जैसे जहाज में से खिड़की खोल के छलांग लगा दी, हाय हाय ये निकल गया तो पता नहीं क्या होगा। ये निकलता फिर दुनिया मिलती है, फिर दुनिया जलील होके आती है, पांव पड़ती है, अल्लाह के बंदे मुझे कबूल कर ले, और आपको समझ नहीं आती कि मैं इस दुनिया का करूं तो क्या करूं, ये उसके वादे हैं। तो लिहाजा इतनी सी बात रखिए, दूसरी पे चलते हैं। दुआ और मुनाजात। सालेहीन या जिसको आप औलिया कह लें, सुलहा कह लें, आबिद कह लें, अब्द कह दें, इनका अल्लाह की जात से इतना गहरा ताल्लुक होता है कि वो हर कदम और हर मरहले पर पहले अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, फिर किसी से तज़किरा भी करना पड़े तो करेंगे, नहीं तो नहीं करते। ऐसे बंदे दुआओं की पोटलियां होते हैं। वो कहते हैं किसी बंदे से मांगो। देखिए मेरे पास सैकड़ों मैसेज होते हैं, मैं इकरार करती हूं कि मैं सबको वक्त पे जवाब नहीं दे पाती, दुख सुख। तो मैं जब किसी का सुनती हूँ, आज सुबह भी किसी का कोई 3-4 मैसेज मिला हूं तो उनके को 18 मिनट के थे, जो मेरे लिए बहुत मुहाल थे सुनने, लेकिन चूंकि मैंने उसको किया हुआ था टैग के शायद कोई इंपॉर्टेंट ही है तो मैं सुनूं, तो मैंने सुनना शुरू कर दिया। यकीन करें कि जो बहनों के दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, वो अपने दुख को ही समझती हैं, और वो मेरे से इतना चाह रही थी कि ये कर दें, और अंदर बात कुछ भी नहीं थी, मुझे उन पर तरस आने लगे। मैंने कहा मेरे जैसे निकम्मे और सुस्त बंदे को इसने मैसेज किया हुआ 4 दिन का, हालांकि ये बात अगर ये 2-4 सीधी सीधी बातें समझ आ जाएं तो मुझे उस पर तरस आने लगा, और मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्यों उसने किया, मुझे क्या समझ के किया, मेरी कोई क्वालिफिकेशन है इस बात की, कोई बात नहीं है वो, ये तो उसको खुद भी समझ आनी। बंदों को सुनाते हैं, मशवरे भी मांगते हैं, उनसे राय भी लेते हैं, उनको कहते हैं हमें इजाजत दे दें। कल किसी का और मैसेज सुन रही थी, पंजाबी में बोल रही थी, ताड़ी इजाजत चाहिए, मैं वजीफा कर ला, तुम मेरी एक दुआ भी दसो, फिर नाल ओदी इजाजत भी दियो, तो फिर देखियो मैं कितनी मंगती। इतने भोले लोग हैं दुनिया में, मुझे रोना आता है बिलीव में। आप क्या साहूकार समझते हैं अपने आप को इल्मी एतबार से? अल्लाह के बंदे जो सालेहीन होते हैं ना, हर कदम हर मरहले पर पहले दुआ करते हैं अल्लाह से, फिर बंदे को कहते हैं बेटा जरा छोड़ोगे इधर, मियाँ साहब जरा ये काम करना है तो कर ले। पहले अल्लाह को कहते हैं अल्लाह जी ये मियाँ साहब से नो ना निकले, ये बच्चे को मैं कहने तो लगी हूँ कि बेटा ये फूफो की बेटी से शादी कर लो, लेकिन पहले अल्लाह जी को कह चुके होते हैं अल्लाह जी इस बच्चे के मुंह से हाँ निकलवाना। इसको लोग कहते हैं ये बाबा जी करनी वाले हैं, ये औलिया करम जी इनकी बुरी होती है, लोग कहते हैं ना, असल में वो अल्लाह से कह चुके होते हैं। असल सिरा पकड़ लेना आप, जैसे आप वो क्या कहते हैं मेन स्विच आपके हाथ में आ जाए, अंदर के बटन तो बेकार है ना, मेन स्विच जो बंद कर दिया, और अगर बाहर से ही कोई क्लिक कर दे तो सारे खुद चल देंगे। मेन स्विच सालेहीन का दुआ की सूरत में अपने हाथ में होता है, और वो अपने आप को असगर और अल्लाह को अकबर और आला और अज्जवाजल समझते हैं। दुआ और मुनाजात का रिश्ता होता है इनका अल्लाह ताला से, कैसे? वल्लज़ीना यकूलून रब्बना सरिफन्ना अज़ाब जहन्नम, ये वो लोग हैं जो हर वक्त यकूलून, आप अगर इसकी ग्रामर में जाए ना, कहते ही रहते हैं, ये नहीं कि कह दिया भाई एक दफा, इस्तमरार होता है उनमें। इस्तमरार में के मर्र 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 अतलाक मर्रतैन, वो लफ्ज है, कहते ही रहते हैं कहते ही रहते हो, जैसे आप उस पे ऑटो पे चला देना रीप्ले रीप्ले रीप्ले, यकूलून एक दफा कह के कह दिया अल्लाह जी असरिफन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा, यकूलून कहते ही रहते हैं, उनकी दुहाइयां होती हैं अल्लाह आग से बचाना। लोग कहते 7 दफा कह लो अल्लाह मजीरना मिन नार, अल्लाह मजीरना मिन नार, काफी है सुबह शाम कह दो, ये कहते हैं नहीं। और ये आपको पता है किसकी दुआ है? इबाद रहमान की, यही सालेहीन इबाद है। लफ्ज इबाद क्यों कहा है अल्लाह ने, यानी अब्द की दो जमे होती हैं, एक इबाद होता है एक अबीद होता है, और वो दोनों कुरान में, ये इबाद रहमान क्यों, ये अबीद रहमान क्यों नहीं, किसी दिन पूछ लीजिएगा फिर बताऊंगी, पता है तो फिर खुशी की बात है। ये अब्द ही इबाद रहमान है सालेहीन, इनके कुरान ने बड़े नाम दिए हैं, हमा वक्त लगे ही रहते लगे ही रहते हैं लगे ही रहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि देखो ये कभी ना कहो कि मैं अल्लाह से सवाल नहीं करूंगा, अल्लाह से नहीं मांगूंगा, ये है वो कहते हैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा। तीसरी सिफत लिखी है सालेहीन की, अला अखलाक के हामिल, अखलाक बड़ा प्यारा होता है, बुलंद अखलाक। कुरान क्या कहता है, व इबादुर रहमानल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, सलामती की बातें करते आजिज़ मिजाज हो, जब अखड़ लोग इनसे बातें करते मुंह को आते हैं इनके, ये कहते हैं तुम्हें सलाम करते हैं नहीं सलाम मुतारका। और क्या कहते हैं अल्लाह ताला इनके बारे में, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, ये झूठ के गवाह नहीं होते, ये झूठी महफिलों में नहीं बैठते, ये झूठ जहां झूठी बातें झूठी इज्जत झूठा टोर टप्पा उन महफिलों में नहीं बैठते। वैजा मर्रु बिल लघवी मर्रु किरामा, ये जब लघव से गुजरते हैं तो इज्जत से गुजर जाते हैं, ये ऐसे वक्तों में वहां बैठ नहीं जाते, नहीं गिफ्ट देने आई हो ना, फिर वो उन्होंने कहा खाना खा के जाइए ना, बस इंतजार कर रही हो ना, वो अपनी बेइज्जती समझते ऐसी जगह पे बैठना, ये हमें सूट करता है, हम सालेहीन बनना चाहते हैं और तुम हमें बेइज्जती की जगहों पे बिठाते हो, कोई शराब खाने में जाके बैठता है, कचरे के ढेर पे कोई जाके बैठता है कि बस मैं थोड़ी देर के लिए आई हूं इधर किसी का इंतजार करने के लिए। तो मुनकसिरुल मिजाज आजिज मिजाज, चलने में खूबसूरती बोलने में खूबसूरती, जाहिलों से उलझते नहीं, इनकी लड़ाई किससे होनी है, इन्होंने बोलना ही नहीं आगे से, वो कहता है आपसे मैं क्या बात करूं आपको तो समझ ही नहीं आनी, और सलामती सलामती सलामती, झूठी मजलिसों से तकल्लुब वाली मजलिसों से गाने बजाने वाली मजलिसों से, शराब चाहे उसको वो किसी और रंग में पिला रहे हो, उन सारी मजलिसों से उठ जाते हैं, दामन बचाते हैं इज्जत और वक़ार के साथ उठ जाते हैं। और अगर याद रखिए कि कोई अपनी नेकियों पे इतराए, इसी में ये बात है लिख लें, जो अपनी नेकियों पे इतराए और नेकियों को अपने नफ्स से मंसूब करे, और जब लोगों के बीच में आए तो अपनी तारीफों के गुण गाए, सालेहीन इन सारी चीज़ों को शिर्क समझते हैं। चौथी चीज इस्तकामत, बरगजीदा बंदे, सालेहीन का दर्जा मिल ही नहीं सकता आपको जब तक आप टिक टिके ना रहे, जमे ना रहे, वो पारा नहीं होता कि इधर से उधर उछल रहे, उधर से उधर से, कभी नेकियों में आगे कभी गुनाहों में आगे, कुछ भी नहीं छुटता उनसे। और नेकियों में भी पता नहीं किधर किधर भटकते हैं, वो जूं की टोर से चलते जाते हैं, क्योंकि नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू। सबको आता है ये तर्जुमे, अब मैं तर्जुमे नहीं बोल रही। हामिम सजदा की आयत नंबर ये 30 है। तो इस्तकामत होती, हालात मुवाफिक हों, हालात मुखालिफ हों, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ पत्ते दरख्तों से नहीं गिरते, जितनी मर्जी आंधियां आ जाए, और कुछ दरख्त खड़े रहते हैं, और कुछ तो पहली हवा में चले जाते हैं। और पसंदीदा अमल अल्लाह का यही है कि बंदा जम जाए। इमाम बुखारी ने इस पर एक हदीस नकल की है कि वमा काना अहब्बद्दीन इलैही मा दाम अलैही साहिबहु। कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ दीन में पसंदीदा तर अमल वो है जिसका करने वाला इसको दायमी तौर पे करे। इन्ना हब्बल आमाली इलल्लाही अदवमुहा व इन कल्ला। दवाम के साथ करते हैं चाहे कलील हो, ये दो लफ्ज अंदर निकले हैं, ये बुखारी की रिवायत है। इस्तकामत फिद दीन, इससे आप सालेहीन बनेंगे। ये 4 दिन की नेकियां नहीं होती, ये खुर्च खुर्च के अपने किरदार को साफ सुथरा करना होता है। और फिर आप देखिएगा कि अल्लाह आपसे क्या करामते कराते। ये करामत है कि आप इस्तकामत पर रहे। लिखिए औलिया कराम या सालेहीन, या आपको जो भी नाम इसके दिए हैं, इनकी असल करामत इस्तकामत होती है। किसी ने कहा कि कहाँ फुलां बंदा है, कोई कहा मुझे बड़ा नेक बंदा चाहिए, मुझे मिला दो। उसने कहा अच्छा फलां जगह चले जाओ। चले गए, देखा 2-4 दिन रहकर वापस आए, कहा सुनाओ। कहते मैंने तो उसकी कोई करामत नहीं देखी, कोई करामत नहीं देखी। तुम कहते तो बहुत बड़ा वलीउल्लाह। कहेंगे ये बताओ कि फजर से पहले उठ जाता है। कहता हाँ उठता तो है। अच्छा तहज्जुद पढ़ता है? पढ़ता है। अच्छा मस्जिद तक जाता है? नमाज जुमात से पढ़ता है। हाँ, यानी 4-6 चीज़ें पूछी कि जमात से जाता है। कहते हाँ। कहते तुमने उसको कोई हराम खाते तो नहीं देखा, तुमने उसको किसी में कहा नहीं? कहते यही है विलायत, ये है उसकी करामत। आज के दौर में ये करामत है किसी बंदे की कि वो 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया और बाकी मामले भी उसके अच्छे हों। 5वीं चीज़ लिखिए तकवा। सूरत यूनस में अल्लाह ने औलिया अल्लाह की एक सिफत लिखी है जिनको आप सालेहीन के एंगल में इस वक्त समझ रहे हैं। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और आगे फिर खुशखबरी है, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील अली कलिमातिल्लाही ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। ये है तकवा की वो सिफत, जब ये आती है लिखिए अल्लाह की तरफ बढ़ने के रास्ते में पहला कदम तकवा है, जैसे आज शुरू में बताया, और दूसरा कदम विलायत है, सालेहियत है। जब तक तकवा मुकम्मल ना हो, विलायत मुकम्मल नहीं होती। और ये तकवा सरासर शरीयत की इत्तबा का नाम है, अतीउल्लाह और अतीउ रसूल का नाम है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अवामिर और नवाही की पाबंदी का नाम है, और इसी तरह हदूद इलाही की मुहाफिजत, हिफाजत करता है बंदा अल्लाह की हदों की हिफाजत और इत्तबाए सुन्नत। फिर बोल देती हूँ, अगर आपको सालिहीन में आना है, विलायत के दर्जे पे आना है, तकवा की सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी, जिसमें नंबर एक शरीयत का इत्तबा। आज लोग विलायत के नाम पे पता नहीं क्या कुछ अजीबोगरीब काम करने लग गए, कुछ नहीं, शरीयत के दायरे से निकलकर आप वली नहीं बन सकते, सवाले नहीं बन सकते, अब नहीं बन सकते। फिर जितने हुक्म हैं उन पे अमल, जितने डोंट्स हैं उससे रुकना, और अल्लाह की हदों की पाबंदी, और इसी तरह सुन्नत की इत्तबा करनी है। और इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर खैर की बातें आएंगी। जब ये चंद चीज़ें आ जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे, और वो क्या है कि आपको ईमान बड़ा ही प्यारा लगेगा। यही टॉपिक कंटिन्यू होगा अगली सेशन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तौफीक दे। क्या दिल में आया है आपको, यही तो नहीं बहुत बड़ा लग रहा? देखिए अभी आप याद रखिए, ये कच्ची है, फिर पक्की पड़ेंगे। ये कच्ची थी अभी, अभी तो मैंने इसमें आपको पता नहीं कितनी चीज़ें बतानी है, क्योंकि अभी मेरा आपका काम ही है कि सिर्फ इसी पे आ जाए। सिद्दीकियत तो नसीब होगी जब होगी, शोहदा तो बनेंगे जब बनेंगे, वो भी निकलेंगे लोग, लेकिन सालेही बन जाइए। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने आप से, अगर मैं सालेहीन में भी आ गई तो। आपने सोचा होगा ये पता नहीं क्या सवाल है, नहीं, इनको नहीं, हमें सिद्दीक बताइए। हमारा हाल यह कि करीब की नेकी छोड़ के दूर की लगते हैं, या नमाज नहीं पढ़ते और हरम में पढ़ने के लिए रोते हैं, या नबी की सुन्नतों को ज़िबा करते हैं वहाँ रोज़े की जालियों को चूमना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।